लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि लोक धर्मी विश्वासी रचनात्मक ढंग से वर्तमान विश्व की चुनौतियों का प्रत्युत्तर प्रदान कर अपने विशिष्ट मिशन को संपादित करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल, एक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना की गई है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है, निष्कपट लोग आनंद मनाते हैं। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 97वें भजन के अंतिम 3 पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। 97वें भजन में सर्वोच्च ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है। इस भजन में देव मूर्तियों की पूजा करने वालों और मूर्तियों पर गौरव करने वालों को भी चेतावनी दी गई है कि उन्हें निराश होना पड़ेगा, इसलिए कि केवल प्रभु ईश्वर ही पृथ्वी के एकमात्र स्वामी और सृष्टिकर्ता हैं। भजनकार कहता है, ईश्वर तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है, तू ही सभी देवताओं से महान है। भजन के अंतिम 3 पदों में भजनकार समस्त ईश भक्तों को प्रभु ईश्वर की छत्र छाया में रहकर सुरक्षा पाने का आश्वासन प्रदान करता है। वह बुराई से घृणा का केवल परामर्श नहीं देता, बल्कि बुराई के परित्याग का आदेश देता है कि मनुष्य सभी बुराइयों से दूर रहें, इसलिए कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे भक्तों को दुष्टों के पंजों से छुड़ाते हैं, इसलिए कि भक्त खुद यह कार्य नहीं कर सकते। कहता है, धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है। भले ही बुराई उसके इर्द गिर्द मंडराती रहे, बुराई का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बुराई के बावजूद ईश्वर राज करते हैं। वे कण कण में समाये हुए हैं, वे मानव मन के अंतर में विद्यमान हैं। बुराई और निराशा के अंधकार में धर्मियों के लिए ईश्वर ज्योति के सदृश उदित होते और भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए ईश भक्तों को आमंत्रित करता है कि वे ईश्वर में आनंद मनाएं। कहता है, धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो।
जगत गुरु प्रभु जी नमो नमः,
जगत गुरु प्रभु जी नमो नमः,
सद्गुरु प्रभु जी नमो नमः,
सद्गुरु प्रभु जी नमो नमः,
मम गुरु प्रभु जी नमो नमः,
मम गुरु प्रभु जी नमो नमः,
नमो नमः।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 98वें भजन पर दृष्टिपात करें। इस भजन में प्रभु ईश्वर को पृथ्वी का न्यायकर्ता घोषित किया गया है। भजन के प्रथम तीन पद इस प्रकार हैं: प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है, उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है, उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इज़राइल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। श्रोताओ, शताब्दियों के अंतराल में माता कलीसिया उक्त भजन के द्वारा ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों को प्रभु के आदर में नया गीत गाने के लिए आमंत्रित करती रही है, ताकि ईश्वर के आदर में सदैव और निरंतर नया गीत गाया जाए, हर युग में नया गीत गाया जाए। भजनकार घोषित करता है कि प्रभु ने महान कार्य किए हैं, ईश्वर के कार्य अपूर्व हैं, जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं। नबी ईसाया के ग्रंथ के 40वें अध्याय के 28वें पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु अनादि और अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, वह कभी क्लांत अथवा विश्रांत नहीं होता, कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। और फिर ईसाया के ग्रंथ के 45वें अध्याय के 1 से लेकर 7 तक के पदों में सीरुस यानी कि पारस के राजा के अभिषेक और राष्ट्रों को उसके अधीन करने की चर्चा है, ताकि लोग यह जान जाएं कि ईश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल को मुक्ति दिलाने और उसे अपने घर जेरूसलम लौटाने के लिए उस युग में विश्व के अत्यधिक शक्तिशाली राजा का उपयोग किया था। ईसाया के ग्रंथ के 40वें अध्याय के पहले पद में नबी कहता है, तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, जेरूसलम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उसे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन अब समाप्त हो गए हैं। श्रोताओ, बाइबल आचार्यों का मानना है कि स्तोत्र ग्रंथ का 98वां भजन ईसा पूर्व 539वें वर्ष में जेरूसलम के मंदिर के निर्माण के समय रचा गया था, जो बाद में लोक भक्ति का केंद्र बना। नवीन मंदिर के निर्माण से एक नवीन स्थिति बनी थी, जिसमें ईश भक्त एकत्र हुए और उन्होंने ईश्वर के आदर में नया गीत गाया। अब भजनकार चाहता है कि हम भी प्रभु ईश्वर के महान कार्यों को पहचाने और उनके आदर में नया गीत गाएं और पृथ्वी के कोने कोने तक उनके न्याय और उनके मुक्ति विधान की उद्घोषणा करें। आगे 98वें भजन के दूसरे भाग में भी भजनकार प्रभु का जयकार करने हेतु हम सबको आमंत्रित करता है। ये पद इस प्रकार हैं: समस्त पृथ्वी प्रभु का जय जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए। भजनकार कहता है, वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ, तुरही और नर सिंघा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगें, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें, नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठें, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्यायपूर्वक संसार का न्याय करेगा। वह संसार का न्याय करने आ रहा है, वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। श्रोताओ, इन शब्दों में प्रभु ईश्वर को निष्पक्ष न्यायकर्ता घोषित किया गया है। ईश भक्तों को मिला यह सर्वाधिक अनमोल वरदान है कि सांसारिक शक्तियां जो भी करें, वे ईश्वर के न्याय पर भरोसा कर सकते हैं। यदि ईश्वर पर उनका विश्वास मजबूत है और यदि वे ईश्वर के नियमों पर चलकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें संसार की शक्तियों से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर उन्हें न्याय दिलाने वाले हैं। ईश्वर ही है परम न्यायकर्ता, इसलिए ईश भक्त आनंद मनाते हुए प्रभु ईश्वर का जय जयकार करें।
जगद्गुरु